नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज के इस वामन द्वादशी के 14 सितंबर के प्रभात जागृति में आपका स्वागत है। श्री वामन द्वादशी साल भर के 4 महाद्वादशियों के बीच में आती है। इसको भागवत में विजया महाद्वादशी भी कहा गया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में देवताओं ने दानवों का पराजय किया, डिफीट किया उनको। और उसके बाद में सब दानव दैत्य लोग बेहोश हो गए, कुछ मर गए, बहुत लोगों के हाथ पांव टूट गए। तो युद्ध होने के बाद में शुक्राचार्य ने उनको सबको संजीवनी मंत्र देकर जीवित कर दिया। और वो जीवित होने के बाद में बलि महाराज ने शुक्राचार्य को गुरु स्वीकार किया। और उसके बाद में शुक्राचार्य के साथ में अनेक ब्राह्मणों की इतनी सुंदर सेवा की कि शुक्राचार्य के कृपा के द्वारा उसको ब्रह्म तेज प्राप्त हो गया, अनंत वरदान प्राप्त हो गए, बल प्राप्त हो गया उसको, ऐसे धनुष, ऐसे तोणीर, ऐसे शस्त्र अस्त्र प्राप्त हो गए कि बहुत तेजस्वी हो गया। और इस बीच इंद्र ने कुछ अपराध किया, इसलिए इसका सारा ऐश्वर्य खो गए। तो जैसे ही अपने गुरु की, ब्राह्मणों की संतुष्टि और आशीर्वाद बलि महाराज ने प्राप्त किया, तो तुरंत सब कुछ जो उसको दिव्य, क्या कहते हैं उसको, चिलखत, क्या बोलते, आर्मर, वो प्राप्त हुआ। सब कुछ प्राप्त धारण करके उसको एक दिव्य रथ भी धारण प्राप्त हो गया, दिव्य रथ गुरु की कृपा से। तो दिव्य रथ, छाती पर चिलखत, तलवार, दिव्य तोणीर, धनुष, सब धारण करके वो ब्रह्म तेज के साथ में उसने अमरावती पर आक्रमण किया। तो जैसे वो तेज से आया तो सारे लोग, देवता लोग डर गए, तो सब बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उनको बताया कि वो ब्रह्म तेज प्राप्त करके आ रहा है, इस वक्त आप उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आपके पराजय निश्चित है, विधि अभी आपके अनुकूल पक्ष में नहीं है, समय और विधि, इसलिए अभी आप सब लोग अपना अपना घर छोड़ के छुप जाओ, अपना अपना रूप बदलो और कहीं गुफा में, कहीं यहाँ वहाँ अपने आप को छुपा लो, जब योग्य समय आएगा तो देखा जाएगा। उसके बाद में बलि ने देखा कि कोई है ही नहीं युद्ध करने के लिए, सीधे जाकर पूरे स्वर्ग लोकों पर कब्जा कर लिया, पाताल लोकों पर कब्जा कर लिया, पृथ्वी लोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के स्थान पर जाकर बैठ गया। तो उस समय कश्यप मुनि जो थे वो तपस्या में थे, ध्यान में थे। अभी आपको अर्जेंट काम भी होगा ना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ध्यान में बैठे हुए, ध्यान खुलेगा उनका तभी उनका आपकी अर्जी सुनेंगे। वो बहुत दिन दुखी रही वो, क्योंकि उनके पुत्रों की स्थिति देवताओं की इतनी इतनी मतलब दारुण थी कि ना कोई राज्य, ना कोई श्री, ना कोई अधिकार, ना कोई, उल्टे डर के मारे भेष बदल कर छुपके जी रहे हैं, क्या जिंदगी है क्या ये, बड़ी दुखी थी वो। तो जब ही उनके पति ध्यान से बाहर आ गए तो उन्होंने उनको विनती किया कि कुछ कीजिए आप। फिर कश्यप मुनि ने समय की गति को समझाया अपनी पत्नी को कि समय की गति कैसी होती है, कभी इसके पक्ष में होती है, कभी उसके पक्ष में होती है, कभी ये विजयी कभी वो विजयी, कभी ये पराजयी तो कोई वो पराजय, कभी धन है तो कभी नहीं है, ये हमारे भौतिक जीवन का सार है, है? कभी कुछ है कभी नहीं, कभी यशस्वी कभी अपयशस्वी, कभी टॉप टॉप पर कभी बॉटम पे, फिर भी उन्होंने अपने ऐसे कहते हैं कि अदिति को ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा तत्व ज्ञान जो बताया उनके पति ने। देखो ऐसा होता है ना, आदमी जब भी आर्त होता है ना, आर्त दुखी होता है, भागवत में लिखा है कि वो आर्त अवस्था में पति के पास भी गई थी, तो आर्त अवस्था जब तक समाधान नहीं होता है तब तक कुछ दिमाग में नहीं जाता नहीं। जैसे कंस को जब ऐलान हो गया कि आठवें देवकी के पुत्र के द्वारा वध होगा, तो वसुदेव ने बहुत समझाया उनको, यहाँ वहाँ की बातें समझाई, समझ में नहीं आया। एक ही बात समझ में आई कि मैं सारे बालकों को आपके पास लेके आऊँगा ये समझ में आया तो तलवार नीचे रख दिया उसने। तो आर्त स्थिति ऐसी होती ना, वो एक दिमाग का बहुत सारे दरवाजे बंद कर देती है। जब आर्त होता है आदमी, कोई उसको परेशानी होती है, तब तक वो सॉल्व नहीं होती, तब तक ना हम लोग कोई बड़ा बड़ा ज्ञान उनको दे नहीं सकते। अब देखते हैं ना काउंसलिंग में कैसे होता है रामचरण रूप, जब तक उसका दुख जो है ना वो आप एड्रेस नहीं करते हो, तब तक आप उस कृष्ण की बातें नहीं बता सकते। उसका जो जल रहा है जिस तकलीफ से, पहले उसका समाधान हो जाए थोड़ा बहुत, तो आगे की बातें सुन सकता है। तो अतिथि का कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जिसके वजह से ये दानवों का प्रभाव होगा और मेरे पुत्र वापस अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। तो फिर कश्यप मुनि ने उनको पयोव्रत दिया। भागवत में बहुत उसका गौरव है पयोव्रत का, अभी उसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही मेटिकुलस विस्तार पूर्वक उसकी विधियां हैं। और ऐसे अदिति तो बहुत दिव्य औरत थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो देवताओं की माता है, वो हाँ प्रजापति कश्यप की पत्नी है। तो बड़े ही दिव्यता से उसने पयोव्रत का पालन किया। उस पयोव्रत के अंत में श्री वामन देव भगवान का जन्म हुआ। भाद्रपद के शुद्ध पक्ष के द्वादशी के दिन श्री वामन देव अवतरित हो गए। श्री वामन देव भगवान की, उनका तेज, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण आभा देखकर सब लोग इतने प्रभावित हो गए। सबके मन में जो आर्तता थी ना, वो सब आर्तता नष्ट हो गई उनका केवल दर्शन मात्र से। भगवान जब दर्शन देते ना, आप देखेंगे जब वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया देवकी के साथ जेल में, तो सबसे पहले क्या हुआ, भय नष्ट हो गया। भगवान का दर्शन जब हम दिल से करते ना, सारे भय नष्ट हो जाते हैं। और जो हमेशा भगवान को हृदय में लेकर चलते हैं वो हमेशा भय मुक्त रहते हैं। हम लोगों को ये सीखना है, हमारा कृष्ण कॉन्शियस जीवन जो है इतना भाग्यवान क्यों है, क्योंकि केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा ही, कृष्ण भावना के द्वारा ही, कृष्ण को हृदय में स्वीकार करने के माध्यम से ही हम भय मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा सर्व व्यक्ति दुनिया में भयग्रस्त हैं। तो फिर यहाँ पर सुंदर वर्णन आता है, वामन देव का जब जन्म हुआ सभी ऋषि मुनि वहाँ पर इकट्ठा हो गए, सभी देवता इकट्ठा हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म लोक से उनका तेज देखा, हाँ सब लोग इकट्ठा हो गए। उसके पहले सभी देवताओं ने अदिति के गर्भ की प्रदक्षिणा की। जन्म हुआ तो जय जयकार किया गया वामन देव का, वो बटु वामन के रूप में प्रकट हो गए। उनका दर्शन देकर सबको आनंद प्राप्त हो गया। उसलिए जन्म के जितनी भी विधि होते सब कश्यप मुनि ने अपने सिद्ध किए। और उसके बाद में बहुत सुंदर वर्णन है, इतना मतलब भगवान का अगर उपनयन संस्कार हो गया हो रहा हो, उसमें आपको अगर खड़े रहने का मौका मिलता है प्रेक्षक के रूप में, कितना आनंद आएगा। उसमें जब उनका उपनयन संस्कार, जनी संस्कार, ब्राह्मण संस्कार किया जा रहा है, तो स्वयं सूर्य भगवान ने वो सूर्य गायत्री उनको दिया। फिर बृहस्पति ने उनको ब्राह्मण जनी पहनाया, कश्यप मुनि ने उनको वो सेक्रेड स्ट्रॉ बेल्ट, मतलब जो पहनते हैं ब्रह्मचारी, वो दिया। कैसा होता ना, एक ब्रह्मचारी यहाँ पहनते हैं, फिर उसको कोपिन पहनते हैं, तो कोपिन उनके माता ने दिया उनको, स्ट्रॉ बेल्ट उनके पिताजी ने दिया। भूमि माता ने उनको मृगाजिन दिया, मृगाजिन ने डियर स्किन, और चंद्र देवता ने उनको ब्रह्म दंड दिया जो ब्राह्मण पहनते हैं। अदिति ने उनको कोपिन दिया, और स्वर्गलोक के देवताओं ने उनको छतरी दिया, और ब्रह्मदेव ने उनको कमंडलू दिया, सप्तऋषि ने उनको कुश दिया बैठने के लिए, और सरस्वती माता ने उनको रुद्राक्ष की माला दिया, कुबेर ने उनको विमान विमान दे दिया और साथ में एक भिक्षा मांगने के लिए पात्र भी दिया, और शिवजी भगवान ने उनको और पार्वती देवी ने वो जो भिक्षा पात्र है जो उनको कुबेर ने दिया उसमें सबसे पहले दक्षिणा दिया, उनको भिक्षा दिया। इस तरह से सब देवताओं के द्वारा सुंदर तरीके से स्वागत करने के पश्चात जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम के लिए वो चल पड़े। ये सब धारण किया उन्होंने, मृगाजिन जनीव और छत्री कमंडलू भिक्षा पात्र कोपिन सब धारण करके वो निकले। ऐसे कहते हैं कि जब वो चल रहे थे तो पृथ्वी दोलायमान हो रही थी, हाँ उनके कोमल चरण कमल पड़ रहे हैं, लेकिन वो विश्वम्भर है ना, वो पूरा विश्व का भार स्वयं निर्माण है वो भगवान अपने स्वयं, इतने वो वजनदार जब वो चल रहे हैं तो पृथ्वी पर एक तो ऐसा कह रहे हैं कि वो गड्ढे गिर रहे हैं, साथ में पृथ्वी दोलायमान हो रही है। और इस अवस्था में वो उस जगह पहुँचे नर्मदा नदी के किनारे। हाँ अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, भृगु कच्छ यानी आज का जो भरूच है, बहुत दूर है यहाँ पास में भरूच, उसका नाम है भृगु कच्छ, यानी भृगु मुनि ने वहाँ पर तपस्या की थी पहले, उनका वो आश्रम का स्थान है, भृगु मुनि का स्थान है वो, तो वहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है। क्यों यज्ञ हो रहा है, बहुत विशेष स्पेशल चीज़ है, देखो बहुत सहजता से बोलता ना वो क्या कहते हैं उसको डिक्लेयर्ड विनर, मतलब क्या कोई फाइटिंग करने के लिए है ही नहीं, फाइनल राउंड में अगर प्रतिद्वंद्वी बोलता है कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ तो अभी बोल विजय हो गया ना वो बिना युद्ध किए, ऐसा बिना युद्ध किए जो उन्होंने पदाक्रांत कर दिया है, अमरावती को अपने कब्जे में कर लिया है और वो ऑलरेडी सिंहासन में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मान्यता नहीं है उसको इंद्र के रूप में, क्योंकि इंद्र पद है ना, इंद्र व्यक्ति नहीं है, देवता लोग मानते नहीं उनको कि ये अपना राजा है करके। दो चीज़ के लिए शुक्राचार्य ने ये 100 यज्ञ करवाए, एक चीज़ तो यह है कि सारे देवता लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये हमारा इंद्र है, थैंक यू सर, सैल्यूट, और दूसरा यह है कि उसका इंद्रपद बना रहे लंबे समय के लिए। इसके लिए उन्होंने शुक्राचार्य ने क्या किया, बोला कि 100 यज्ञ करना पड़ेगा, और 100वें यज्ञ के अंत में आप जब ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे तो आपका इंद्रपद निश्चित होगा, इंद्रपद चिरंतन काल के लिए भी होगा। तो ये यज्ञ कहाँ हो रहा है, भृगु कच्छ भरूच में हो रहा है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, और वहाँ पर भगवान जब आते हैं तो इतना तेज था उनका, उन्होंने सारे लोगों का तेज हरण कर लिया, उन्होंने सारे ब्राह्मणों का तेज हरण कर लिया, मतलब कैसा होता ना, समझा अभी 200 वाट का बल्ब है उसके सामने 1000 वाट का बल्ब जलेगा तो कैसा लगेगा, आपने दीपावली में हजारों दीपक लगा के रखे हैं, जैसे सूरज उगता है तो क्या होता है वो उधर ही है अपने पंडती वगैरह, लेकिन इनके तेज के सामने वो दिखते क्या, इतने रोड स्ट्रीट सबके स्ट्रीट रोड चाल बल्ब चालू हैं, लेकिन जब सूरज आता है तो जब एकदम यूजलेस हो जाते हैं। उस तरह से जब भगवान उस यज्ञशाला में अवतीर्ण हुए तो सारे लोग एक तरह से निस्तेज हो गए, तेजवान होने पर भी, तो कहते हैं कि बलि महाराज ऐसे ना एकदम आदरपूर्वक भावना में ऐसे अपने आप खड़े हो गए, इन ऑ एंड रेवरेंस, आश्चर्यचकित अवस्था में वामन देव का ये तीव्र और दिव्य आभा देखकर वो एकदम प्रभावित हो गए, और उन्होंने उनको वंदन किया, सब ब्राह्मण खड़े हो गए, शुक्राचार्य भी खड़े हो गए और वंदन कर रहे हैं उनको, गौरव कर रहे हैं उनका कि ये बालक ब्राह्मण कौन है, इतना तेज लेकर आया, सबको निस्तेज कर दिया उसने। फिर बलि महाराज ने अपने यज्ञ के बीच में उठकर उनकी पाद्य पूजा की, उन पर देवताओं ने फूल वर्षा की, बाकी सब ने मिलकर उनकी आरती उतारी, उनको क्षेम कुशल पूछा, मीठे वचनों से श्लोकों से उनको गौरवित किया उन्होंने। उसके बाद में वो पूछते हैं, हे ब्राह्मण बालक तुम तो बड़े दिव्य लगते हो, मेरा ये भाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण मेरे यज्ञ में भिक्षा लेने के लिए आए हैं, अब मेरा परम सौभाग्य ये, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस समय वामन देव ने जो भी कहा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वामन देव जी कहते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, सबको पता है कहानी, बच्चों को भी पता है, तो बलि महाराज कहते हैं, अरे मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ। वो क्या कहते हैं मालूम उनको, कि सप्तद्वीप जो है ना इस जग में, सेवन आइलैंड्स, वो आप ले सकते हो। अरे हम लोग मीरा रोड में एक फ्लैट लेने के लिए यहाँ पर जिंदगी भर तड़पते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, एक फ्लैट नाम होते होते बुढ़ा हो जाता है आदमी और बच्चे उसमें रहते हैं। इधर सात द्वीप जो है ना, उसमें से एक या सात सारे द्वीप ले लो बोल रहे हो। लेकिन वामन देव ने क्या कहा कि मेरे यज्ञ के लिए मुझे तीन पग भूमि आवश्यक है, पर्याप्त है। और अगर आज की स्थिति में हमारे पास जो भी आवश्यक है वो हमको मिलता है, उसमें अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो तीनों लोगों का साम्राज्य भी प्राप्त हो जाए, सप्तद्वीप भी प्राप्त हो जाए, आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। वो कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है संतुष्टि है। और संतुष्टि किसमें है? आज जो स्थिति है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। कल आप करोड़पति बन जाएंगे, उसमें संतुष्ट रहो। आज आपको हजारों का सैलरी है, उसमें संतुष्ट रहो। आज आपको एक झोपड़ी दी है भगवान ने, बी हैप्पी। कृष्ण के जन्म के समय पर भी आचार्य बताते हैं कि मन की शुद्धि कैसे होती है, संतुष्टि से, बाय सेटिस्फैक्शन हमारे मन की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, मनुष्य जीवन की शुद्धि संस्कार से होती है, ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कृष्ण बुक में। तो वो कहते हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो आज की स्थिति में, तो तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ आप स्वयं हो। आपको तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी आप अधिपत्य में हो, फिर भी आप सौ यज्ञ कर रहे हो क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो। आपको वो पद जो है ना, वो सम्मान चाहिए और चिरंतन काल के लिए पद में बैठना है आपको। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती और तृप्त होने न होने की वजह से मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे आप सात द्वीपों का प्रलोभन मत दो, मुझे अपने अपने तीन भूमि का दान दे दो। तब बलि महाराज कहते, अरे आपके तेज को देखकर मुझे लगा था कि आप बड़े विद्वान हो, लेकिन आप एक सामान्य बालक लगते हो जिसको पता नहीं है कि बलि महाराज जिसके पास में इतना से ऐश्वर्य है, क्योंकि उसको घमंड था ना। ऐसे कहते हैं कि वामन देव ने अवतार क्यों लिया, वो जानते थे बलि मेरा महान भक्त है। लेकिन बलि अब तीनों लोगों को, राजों को प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हनन पतन करने वाला है। देयर वाज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन बलि महाराज लाइफ, कि इसके आगे अगर वो ऐसे कंटिन्यू करते तो उनका पतन होने की संभावना थी। बाह्य कारण तो है, अदिति ने प्रार्थना किया, पयोव्रत किया, कश्यप मुनि ने व्रत दिया, जो भी कुछ है, पहले उन्होंने तपस्या किया था सुतप्पा प्रश्न के रूप में, तो प्रश्न गर्भ के रूप में आए थे, सेकंड टाइम उनके ही तपस्या को फल देने के लिए वो आ रहे हैं, तो अनेक कारण है उसके, एक कारण ये भी था। वो कहते हैं कि आप तो जानते नहीं है मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, मेरे पास आकर आप केवल तीन पग भूमि मांगते हो, आप लगता नहीं बुद्धिमान। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, उस समय शुक्राचार्य कान में आके बोलते हैं, अरे मूर्ख बलि, ये भगवान है, ये बालक के रूप में तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इनको बिल्कुल मत देना तुम तीन भूमि, तीन पग भूमि, क्योंकि तीन पग भूमि में, दो ही पग भूमि में ये पूरा तेरा साम्राज्य नापने वाले हैं। फिर तुम तीसरा पैर कहाँ रखोगे? फिर तुम ब्राह्मण को दिए वचन के न पालन करने वाले रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे, मतलब कुप्रसिद्ध हो जाओगे, सत्य का पालन न करने वाले राजा बनोगे। अभी उस समय बलि महाराज की जो सोच है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सबको विचार करना चाहिए। देखिए उसके सामने कितना कठिन प्रसंग है, जिसने उसको संजीवनी देकर जीवित किया, नंबर वन लाइफ दिया ना उसको, इसने दीक्षा दिया उसको, जिसने उससे इतने अनुष्ठान करवाए, इतना ब्रह्म तेजस प्राप्त करा दिया, तीनों लोगों का साम्राज्य दिया। अभी वो कह रहे हैं इनको दान मत दो, सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप कितने में महान होंगे ना, तो ये परिस्थिति कितनी बिकट है। लेकिन एक एक व्यक्ति जिसका चित्त भगवान के ऊपर स्थिर है, वही ऐसे बांके प्रसंग में सही निर्णय ले सकता है। तो अगेन एंड अगेन क्या हमारी लाइफ जरूरी है? बी कृष्ण कॉन्शियस, हर समय कृष्ण भावना में स्थित रहो, क्योंकि जीवन में तो उल्टे नीचे उल्टे सुलटे प्रसंग आते रहते हैं, विकट आते हैं, सीधे आते हैं, कभी कठिन आते हैं, महाकठिन आते हैं, कभी भयंकर संकट आता है, अगर उसमें सही निर्णय आपको लेना है तो आपका चित्त कृष्ण में स्थिर होना चाहिए। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, संत लोगों का क्या महमती है, उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं सही करते हैं, क्योंकि इनका चित्त श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण अवस्था में स्थिर था। इस चीज़ को भी वो समझ पाए कि ये मेरे इतने महान गुरु हैं, इनके वजह से ये सब हो गया है, फिर भी इस वक्त मुझे वो श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए मना कर रहे हैं। इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम डिवोशनल सर्विस, तो मुझे इनका आदेश पालन नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा गुरु की आज्ञा, ये जीवन में सबसे सर्वस्व है शिष्य के लिए, गुरु की अवज्ञा ये बहुत बड़ा भयंकर पातक है। ऐसे अवस्था में वो ये निर्णय ले सके कि जब मेरे गुरु जी इतने महान होते हुए मुझे अभी इस वक्त अपने मुझे मेरे जीवन के भक्तिपूर्ण सेवा के लिए मुझे विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको पालन नहीं करूँगा। आचार्य बताते हैं उसका कारण ये था कि शुक्राचार्य इतने महान तपस्वी और सिद्ध थे, फिर भी उनको अपने शिष्य के द्वारा मिलने वाली दक्षिणा के ऊपर बहुत आसक्ति थी। इट वॉज अटैच टू द दक्षिणा एंड मेंटेनेंस दैट द गुरु विल गिव, द डिसाइपल विल गिव। तो उनको पता था, वो तो दूरदृष्टि वाले थे, उनको पता था कि भगवान है, इसको छलेंगे, सब कुछ छीन लेंगे, इसको भिखारी बना देंगे, फिर मेरा क्या होगा मैं क्या खाऊंगा, मेरा जो आज बलि महाराज के गुरु का पद है उसका क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा। मटीरियल अटैचमेंट, अगर हम गुरु पद पर भी पहुंच जाएं और हमारे लिए भौतिक आसक्ति है तो हम लोग नरकवासी हैं। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। गुरु पद पर भी पहुंच गए, हमारे अनेक शिष्य हैं, हम सबको अच्छा भक्ति का मार्गदर्शन देते हैं और हमारे विश्व में ख्याति है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कहीं भी वो एंकर नांगर जो अटका हुआ है ना, अगर आसक्ति में लगा हुआ है, तो हम नरक में निवास कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी लोग हमारे अनुयायी बने हुए हैं उनको भी ले जा रहे हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है और वो भगवान, अगर ये मेरे गुरुजी कह रहे हैं, उन्होंने ज्ञान तो दिया ना मुझे कि भगवान है, एक सीक्रेट खोल दिया ना, ये बालक नहीं है, ये भगवान है। धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे बताया कि ये भगवान है, लेकिन अगर ये भगवान है तो मेरा कितना भाग्य है। अरे जिनके दरवाजे पर अनंत जनसंख्या जो है, अनंत देवता ऋषि मुनि मत्था टेकते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वर मांगते हैं, तपस्या करते हैं, उनके चरणों की किरण को पकड़ने के लिए इतना ध्यान तपस्या करते हैं, जीवन बिताते हैं, जन्मों जन्म बिताते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए, अरे वो भिक्षुक बनकर मेरे दरवाजे पे आए, कितना भाग्य है मेरा। ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है कि स्वयं परम भगवान वैकुंठाधिपति अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे द्वार पर आए हैं भिक्षुक बनकर। ये एक उनके मन में विचार है। दूसरा विचार यह है कि अरे मैंने इतना प्रॉपर्टी, देखो कितना उसका पदाकरण तो कर लिया उसने देवताओं को भगा कर, लेकिन उसके मन में रियलाइजेशन क्या है कि ये सब कुछ जो भी है मृत्यु के साथ जाने वाला है ना, कहाँ ले जाऊँगा उसको मैं, सब कुछ जाने वाला है। अरे इस शरीर पर जो मैं इतना प्रेम किया, ब्रह्म तेज प्राप्त किया है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा मुझको, और अगर स्वयं भगवान मुझे कुछ मांग रहे हैं, मुझे देने का मौका मिल रहा है, सब कुछ देना चाहिए। आचार्य ये भी समझाते हैं कि अगर उन्होंने उस समय मांगा होता ना कि मुझे तीन लोग चाहिए बख्शी दक्षिणा में, तो भी दे देता हो, क्योंकि वो यज्ञ है ना, यज्ञ की पूर्ति होना है तो आपको जो मांगे देना पड़ेगा। तो भगवान ने छल करके, भगवान ऐसा लिखा है कि भगवान ने एक छोटा सा विनोद किया उसके साथ, छल किया, लीला करते ना भगवान। अगर वो आते थे बोलते थे भगवती भिक्षा दे ही तीनों लोग दे देना मुझे, तो दे देता उसको, देना पड़ता था उसको, लेकिन भगवान ने छल किया लीला करने के लिए, हम सबको विस्मयचकित करने के लिए, हम सबकी मन की जो भावना है उनके प्रति वो बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला किया। तो उन्होंने ये भी सोचा कि क्या लाभ है मुझे, मृत्यु के समय पे सबको सब कुछ खोकर जाना है, अब ये दे रहे ये लेके जाने वाले हैं तो अच्छी बात है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा इनके चरणों में। एक्सेप्टेड। बलि महाराज को वो ये भी बताते हैं शुक्राचार्य, ओम मत बोलना ओम बोलने से बाद में ही दान पूर्ण होता है, मत बोलना ओम तुम। बोलते महाराज मैं तो बोलूंगा तो शुक्राचार्य शाप देते हैं उसको, तुम राज्यहीन श्रीहीन सर्वहीन हो जाओगे। तब चाहे शुक्राचार्य के शाप से होना है, भगवान के वरदान से होना है, राज्यहीन तो होना ही है। जैसे वो मारिच ने बोला था, मारिच ने क्या बोला था, अरे मरना तो है ही मुझे, लेकिन राजा की अवज्ञा करके मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, शत्रु के हाथ से मरूंगा तो मुक्ति प्राप्त करूंगा, तो ये बेहतर ये है कि शत्रु के हाथ से मृत्यु मारूंगा। सो इंटेलिजेंस, यू नो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपको कुछ खोना ही है तो खोना भी इस तरह से कि भगवान की प्राप्ति हो जाए आपको। जिंदगी में तो खोने के लिए जिंदगी है हमारी, क्या पाने के लिए जिंदगी होती है क्या? एक एक करके सब चीज खोते जाते हैं हम लोग, अंत में सब कुछ खो जाते हैं। तो अगर खोना ही है शान से खोना, हाँ नीलमणि को प्राप्त करते हुए खोना सब कुछ, तो सब खोना भी धन्य है हमारा। तो ऐसे दिव्य विचार से वो ओम बोल के उन्होंने जलपान, क्या कहते हैं उसको, जलांजलि दिया उन्होंने। भगवान ने कहा अभी मैं ले लूँ अपने कदम कल ले लो। तो वो इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए, सब विस्मय चकित हो गए। पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया उन्होंने, जैसे कि वो स्वयं ही तीनों लोग बन गए। और उनके विराट रूप का वर्णन अभी समय नहीं है वर्णन करने के लिए, लेकिन उनके पैरों में नीचे के लोग, उनके कमर में पृथ्वी लोग, उनके हाथ में और भुजा में स्वर्ग लोग, और नीचे के लोग, ऊपर के लोग वेदों की ऋचाएं, ऊपर की तरफ सत्वगुण रजगुण तमोगुण, सारी शक्तियां, हर प्रकार की प्राप्ति, धनुष चक्र चंद्र सूर्य नदियां सागर पर्वत, सब प्रकार के जो निर्माण था वो उनके शरीर में था। तो ये विराट रूप का दर्शन हुआ उनको, लेकिन बालक के रूप में हुआ। वो विराट रूप जो अर्जुन देखा था वो डिफरेंट था, इसमें भी वही सब दिखाई। उनके पैरों के ये जो है ना, क्या कहते हैं, काफ मसल्स, वहां पर सारे पर्वत विराजमान थे। इस तरह से भगवान ने फिर एक ही कदम में पूरा पाताल लोक और पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में उन्होंने सारे स्वर्ग लोगों को माप दिया। और जब उन्होंने अपना पैर उठाया और स्वर्ग लोक को नापा तो ब्रह्मा जी प्रभावित हो गए, क्योंकि उनका पैर की आभा जो थी ब्रह्मा जी के लोक का तेज को नष्ट कर दिया उसने। इतना बड़ा, मतलब कोई सूर्य आ गया हो बहुत भयंकर, 100 करोड़ों सूर्यों का प्रकाश लेकर, तो ब्रह्मा जी लोक का जो दिव्य तेज था वो भी नष्ट हो गया। तो ब्रह्मा जी भाग के आए, देखा तो भगवान के चरण कमल जो है पूरे गौरव के साथ में उनके लोक का शोभा बढ़ा रहे हैं। तुरंत वो अपने कमंडल में जल लेके आते हैं, जो उनकी पूजा का जल है उससे उनका अभिषेक करते हो। दो चीजें होती हैं, ब्रह्मांड का आवरण फट जाता है उनके बड़े उंगली के स्पर्श से, और कारण सागर जो है उसमें से जल उसका बहने लगता है। उससे भी उन्होंने भगवान के चरणों का अभिषेक किया, और फिर शिवजी ने उस जल को कलेक्ट किया अपने कमंडल में, और वही गंगा के रूप में आगे प्रकट हुई है। तो वामन देव गंगा जी का भी निर्माण का कारण है। उसके बाद में बालक के रूप में वापस प्रकट हो गए हूँ, बटू वामन के रूप में। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा सारा साम्राज्य मैंने नाप लिया है, अभी तुमने मुझे वचन दिया है कि 3 पग भूमि दोगे, 3रा पग नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुमको पृथ्वी के नीचे से रहना पड़ेगा। तभी वामन, तो अभी इस समय जो मलि महाराज सोच रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है समझना। इसमें ना बलि महाराज की चेतना का हम थोड़ी चर्चा करेंगे, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो जो चेतना थी भरी महाराज की, हाँ हम लोग स्कूल में पढ़ा है सूर्य, उसमें हमने क्या पढ़ा है, बलि दैत्य को भगवान ने नामोहरम करके, गर्भहरण करके उसको नरक में भेज दिया। यहाँ पे लौकिक कथा समाप्त होती है। लौकिक कथा मतलब क्या, देवता दानव भगवान, भगवान ने दानवों का दान नष्ट कर किया और देवताओं को विजय किया और बलि महाराज को नरक में भेज दिया, यहाँ उनकी कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन जो बलि महाराज की जो दिव्य चेतना है उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है, केवल संतों के बीच में होती है। संत लोग जानते हैं मर्म भक्ति का, वो चर्चा करते हैं। तो बलि महाराज क्या विचार कर रहे हैं कि एक राजा के लिए एक शुद्ध भक्त या ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पालन करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं नरक में जीने के लिए, मैं डरता नहीं हूं भगवान के द्वारा अरेस्ट होने में, मैं डरता नहीं हूं भगवान के द्वारा दंडित होने के लिए। जितना चाहे उतना मुझे दंड या कष्ट प्राप्त हो सकता है, मैं राज्यहीन श्रीहीन हो सकता हूं, बलहीन हो सकता हूं, लेकिन मैं एक ब्राह्मण को दिए हुए वचन को तोड़ नहीं सकता हूं। मुझे भिखारी होने से डर नहीं है। देखो एक बड़े आदमी को ना गरीब बनने का बहुत डर लेता है, अरे धन चला जाए तो मेरा सारा सम्मान चला जाएगा। एक मान मान प्राप्त किए व्यक्ति को अपमान की डर लगता है उसको बहुत, कि कोई मेरा अपमान ना कर ले। इसको बहुत मान प्राप्त है, इसको बहुत विद्या प्राप्त है, वो विस्मृति से वो डरता है कि मैं सब भूल जाऊंगा तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा। तो वो कहता है कि मैं सबसे अधिक डरता हूं असत्यवादी होने की कुप्रसिद्धि के लिए। अगर मैं असत्यवादी के रूप में अगर प्रसिद्ध कुप्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मैं उसे डरता हूं। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था, भगवान मैं आप पे तड़पते हुई जिह्वा से नहीं डरता हूं मैं। ये सब देवता लोग कांप रहे हैं हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, आपका भयंकर क्रोध रूप तो जो युक्त जो रूप है उसको देखकर सारे देवता लोग भयभीत हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता आपका। आई डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ यू, मैं जानता हूं आप मेरे प्रिय पिता हो, लेकिन मुझे वैष्णव अपराध से डर लगता है, मुझे माया से डर लगता है। उसी तरह से ये कह रहे हैं मुझे असत्यवादी होने का डर लगता है, इसलिए मैं सब कुछ खोने पर भी आपको ये दान दूंगा। आपने मुझे आपने हम सबको राक्षसों को हमेशा दंड देकर सही रास्ता दिखाया है। बलि महाराज कह रहे हैं हम राक्षस हैं, आपके विरोध में काम करते हैं, आपके भक्तों के विरोध में काम करते हैं, फिर भी हमेशा आप अवतार लेकर हम पर कृपा ही करते हैं, जहां जहां जिसको मारते हैं उसका उद्धार कर देते हैं, कितने दयालु हैं आप, मैं आपका ऋणी हूं। इस तरह से बलि महाराज ने कहा कि परिवार को रख के जो एक दिन सब कुछ छीनने वाले हैं, मरने वाले हैं हम सब लोग, सब कुछ जीवन के अंत में समाप्त होने वाला है, घर गृहस्थी बच्चे राज्य अधिकार समाज सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो इस स्थिति में भगवान को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं भगवान आप मेरे सर पे अपना पैर रखिए, तीसरा कदम। उस तरह से उन्होंने आत्मनिवेदन कर लिया। ये हमारी जो नवविधा भक्ति है ना, उसके अंदर आत्मनिवेदनम के आचार्य बलि महाराज हैं। एक राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी आत्मनिवेदन जैसे अंतिम नवदा भक्ति के अंतिम विधि के आचार्य बने वो। उन्होंने न केवल अपना सर दिया, अपना अहम भगवान के चरणों में रखा, अपना सर्वस्व अर्पण किया। देखो पहले से ही तो वो भिखारी बने चुके, उनके पास कुछ भी नहीं है अभी, ऊपर से क्या नष्ट हो गया पता है हमको? राक्षस लोग भी उनसे बोले अरे राजा तो भिखारी हो गया अपना, अभी क्या करना है। बहुत क्रोध किया उन्होंने, चिल्लाए वो लोग, चीख किया उन्होंने, चीख पुकारा चीख करके। पत्नी ने आकर निंदा किया उसको कि व्यक्ति ने जो किया वो सही नहीं किया है, विद्यावली आकर उनकी निंदा करती, देवताओं की शत्रुओं के सामने उनकी इतनी घृणा हो रही है। देखो आप जिनको ऐसा ऐसा परास्त किया था कि वो सामने खड़ा ही नहीं हो पाया, उन्होंने जब गए खाली ऐसे रथ में बैठकर भाग गए सब लोग, वो सारे शत्रु लोग जो है वो खड़े सामने भगवान के आते ही सब ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकट हो गए वहां पर उनके सामने, उनका इतना अवहेलना हो रही है तो क्या बचा उनके पास। ऐसा मत समझना कि कल तीन लोग का राज्य गया, इज्जत गई उनकी, मान सम्मान गया, अधिकार गया, सम्मान सब कुछ खत्म हो गया उनका, और ऐसी अवस्था में वो अपनी परीक्षा पास हो रहे। भगवान आगे बोलते हैं तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, इतना सारा भयंकर कष्ट देने के बाद भी तुम अपने स्थान से नहीं हिले, अपनी आत्मकृष्ण भावना जो है उसमें स्थिर रहे आप। तो इस समय भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको डिस्कस करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं तस्याहम अनुगुणामी तद्धनम शनई, इस पर मैं कृपा करना चाहता हूँ उसका धन पहले छीन लेता हूँ मैं। और भी जगह युधिष्ठिर महाराज ने भी भागवत में ये प्रश्न पूछा है, यहाँ पर भी उसका उल्लेख आता है। और भगवान कहते हैं उसको ब्रह्मा जी को कि जब कोई व्यक्ति अपने ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी गर्व नहीं करता है और नम्रता बनाए रखता है वो मेरी कृपा का लक्षण है, इज अ साइन ऑफ माई मर्सी। मान सम्मान धन दौलत परिवार सब तरह से ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी जो मेरे सामने नम्र रहता है, जनता के सामने नम्र रहता है, वो मेरी कृपा का लक्षण है। क्योंकि इतना सब होने पर भी नम्रता होना बहुत मुश्किल है, कुंती देवी भागवत में ही समझाती है। हाँ जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर ए क्या बोलते हैं आगे, ए धवा मधव ये पुमान, ये सब होने पर आपकी भक्ति नहीं हो सकती है। तो आम अकिंचन गोचरम, इसके पास कुछ नहीं है, वही मेरी भक्ति को परिणामकारक प्रति से कर सकता है। तो वो जो कुछ भी नहीं मतलब क्या, हृदय से बाहर सब कुछ है उसमें, हृदय पर वो अपने आप को भगवान पर निर्भर समझता है। तो भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं, ये जो बलि महाराज है वो मेरे कृपा पात्र हैं, ये बलि महाराज सब असुरों में श्रेष्ठ बन गए, लेकिन इतना बड़े कष्टमय परीक्षा में वो पास हो गए। मैंने उसको सारे धन से वंचित कर दिया, उसके पद से उसको हटा दिया, उसके शत्रुओं द्वारा उसको परास्त कर दिया। क्या हुआ उसके बाद में, जैसे ही वो अनेबल हो गए ना, क्या कर रहे अभी, वरुण देव ने उसको आके नाक पास से बांध दिया। अरे जिस वरुण देव को ऐसा देख के भगाया था उसने, रुबाब से आकर उन्होंने वरुण पास नाक पास से उसको बांध दिया। कितना अवहेलना, कितना अपमान कर दिया उसका, ह्यूमिलिएशन। फिर रिब्यूक्ड एंड डेजर्टेड बाय रिलेटिव्स, पत्नी और राक्षसों ने निंदा किया उनका, और कर्स्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर, और क्या चाहिए आपको, क्या बचा क्या उसका, सब तरफ से। हाँ, एक तरफ से स्पिरिचुअल रिलीजियस लाइफ, एक तरफ से फैमिली लाइफ, एक तरफ से वीरता का लाइफ, क्षत्रिय लाइफ, ब्रह्म तेजस, हर तरफ से फिनिश्ड। उतना होने के बाद भी बलि महाराज रिमेन स्टेडी इन द वाव ऑफ ट्रूथफुलनेस, इन कंसिडरेशन ऑफ हिज ग्रेट टॉलरेंस आई हैव डिसाइडेड टू गिव बलि अ प्लेस सुपीरियर टू द किंगडम ऑफ डेमिगॉड्स। अब भगवान उस पर दिखा रहे हैं कि सही भक्ति क्या है। हाँ, वैसे तो और एक बताना भूल गया मैं, उसका कुल भी विपरीत था, उसका संग भी विपरीत था भगवान के लिए, फिर भी वो सारे विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपना कृष्ण भावना बनाए रखा। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, जब उनको बांध कर घसीटा जा रहा था वरुण के द्वारा, यू नो, समझ सकते हैं आप, इतनी सभा भरी हुई, यहां पर परिवार, यहां पर दुश्मन, सब लोग खड़े, उसके बीच में उसको वरुण देव बांध कर घसीट रहे हैं। कहते हैं कि बलि महाराज उस समय एक्सटेसी में थे, इन ग्रेट एक्सटेसी, इन द सिचुएशन ऑफ द अटर ह्यूमिलिएशन, ही वॉज इन अटर एक्सटेसी। ये भक्त हैं, भक्त के जीवन में कुछ भी संकट आएगा, कृष्ण भावना के बल के ऊपर वो आनंदी रह सकता है। कृष्ण भावना एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप सबसे अधिक कष्ट में होने पर भी सबसे अधिक आनंद का एक साथ ही अनुभव कर सकते हो। यू कैन बी ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ द मोस्ट मिजरीज ऑफ लाइफ। ये कृष्ण भावना का एक अद्भुत अंग है जिसका अनुभव करना हमारे जीवन का भाग्य है। इफ़ यू कैन एक्सपीरियंस दैट, आई वेरी फॉर्चुनेट। तो बलि महाराज है ना, उसके ग्रैंडफादर उधर प्रकट हो गए उस समय, और वो भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। वो भी एक बड़ा संवाद है, बहुत सुंदर। वो देख रहे हैं मेरा प्रपोत्र। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज के तरफ से उन्हें भक्ति बीज की प्राप्ति की थी, और उसने स्वयं इतने प्रतिकूल स्थिति में भी उस भक्ति लता बीज को आज एक सुंदर वृक्ष बना दिया था, जिसके वजह से वे जीवन में विजयी हो गए। इसलिए वो द्वादशी का नाम भी विजय द्वादशी दिया है। फिर जाम्बवान प्रकट हो गए, जाम्बवान ने उत्सव मनाया भगवान के जन्म होने का। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बृहस्पति ब्रह्मा प्रकट हो गए, और उनके सामने बलि महाराज ने ये भावना व्यक्त की, भावना ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना व्यक्त की, मैं आपका ऋणी हूँ भगवान। लोगों को लगता होगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्या प्राप्त किया है। संत लोग ही इसको वैल्यू समझ सकते हैं। हम लोगों के जीवन में बोलेंगे कुछ संकट आ गया तो बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया, इतना साल जप किया फिर भी मेरा पुत्र का मृत्यु क्यों हुआ, फिर मेरा धन संपत्ति का चोरी क्यों हुआ, फिर मेरी वाइफ का मृत्यु क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम सोचते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, अरे क्या हुआ, लाभ भगवान का जप करके ऐसा हम उसको इक्वेट करते हैं। फिर बलि महाराज के अंदर वो चेतना थी कि वो जानते थे कि वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, और जो खो रहे हैं वो तुच्छ है उनके सामने। जो खो रहे हैं वो कीमत बहुत छोटी सी है, जिसके अगेंस्ट जो एक प्राप्त हो रहा है वो कितना श्रेष्ठ है, ये बलि महाराज देख रहे हैं। इसलिए इतनी विकट स्थिति में भी धन्यवाद की भावना उनके मन में जग रही है, कृतज्ञता की भावना। ब्रह्मा स्वयं दशम स्कंध में कहते हैं कि जो व्यक्ति विकट स्थिति में भी, संकट आने पर भी, सब कुछ खोने पर भी, भयंकर कष्ट पाने पर भी भगवान को दंडवत करता है, भगवान को धन्यवाद देता है, वो भगवान के धाम का हकदार होता है। और यहां पर बलि महाराज स्वयं ये वर्णन कर रहे हैं कि आपको दंडवत करने का क्या भाग्य है, क्या महती है उसकी। जस्ट टू ऑफर ओबेजेंस टू यू इज सो ग्लोरियस, व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड इफ समबडी ऑफर्स दंडवत टू यू। तो उस पास की स्थिति में होते हुए भी उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम करने का प्रयास किया। वो दंडवत कर तो नहीं पाए, लेकिन प्रहलाद महाराज को भी ऐसे ही पाशबद्ध स्थिति में प्रणाम किया उन्होंने, हृदय से सर झुकाकर। फिर तीसरे सर पर पांव रखा तो भगवान ने कहा रिलीज करो इसको, तो वरुण ने आकर नागपाश निकाल दिया। तब बलि महाराज ने भगवान का गौरव करते हुए दंडवत प्रणाम किया। आगे सुनिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि क्योंकि मेरी परीक्षा में पास हो गया वो, मुझे प्रसन्न कर दिया उन्होंने, इसलिए मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ राज्य उसको दूंगा। जो नरक लोक की जगह पर सुतल लोक है उसको ऐसा बनाऊंगा कि इंद्र भी उसकी ईर्ष्या करेगा। अभी आपको और हमको लगेगा नरक में भेज दिया उसको, लेकिन भगवान नरक को भी स्वर्ग बना सकते हैं, नरक को भी गौलोक बना सकते हैं, उसकी इच्छा है तो। भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हो। तो सुतल लोक को चुना उन्होंने, सुतल लोक को ऐसा ऐश्वर्य संपन्न बनाया, बताया भगवान ने कि ऐसा संपन्न करूंगा उसको कि इंद्र भी अमरावती की ऐसा, मतलब अमरावती क्या चीज है इसके सामने, तो पहले आप पर इंद्र ही आक्रमण करेगा, तो मैं आपको मेरा चक्र भी दूंगा और मेरा चक्र जो है देवताओं के आक्रमण से आपको बचाएगा। फिर क्या बताया भगवान ने, फिर भगवान ने बताया कि मैं स्वयं द्वारपाल के रूप में वहां रहूंगा। हे बलि, मैं आपको ऐसा वरदान देता हूं, आप राक्षसों के बीच में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, लेकिन राक्षसों के संग का आपके मति पर कभी परिणाम नहीं होगा, आप वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे, आपके राज्य में दुख नहीं होगा, मानसिक और शारीरिक थकान नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा आपको, डिजीनेस, पराजय नहीं होगा कभी, और कभी कोई दैवी संकट, मतलब कोई बाढ़ तूफान आंधी ये सब नहीं आएगा। अभी आप जाइए सुतल लोक में, आराम से रहिए, देवताओं के अधिकारी भी आपको परास्त नहीं कर सकते हैं, और मैं स्वयं का द्वारपाल बन के आऊंगा। तो प्रहलाद को आदेश दिया, पता है क्या, प्रहलाद अब यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने ग्रैंड सन के साथ जाओ और सुतल लोक में रहो। उसके हमारी मुल्की की कहानी है उसके साथ में लगे हुई, जानते हैं आप प्रभु जी, प्रहलाद के पास एक भगवान का विग्रह था, उग्र नरसिंह, जो प्रहलाद को भगवान नरसिंह देव ने तब दिया था जब नरसिंह भगवान जाने लगे थे कि अब मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं कैसे रहूँगा आपके बिना, आपकी याद आएगी मुझे, तो भगवान ने उनको उग्र नरसिंह का विग्रह दिया था, उसकी वो पूजन करते आ रहे थे कितने युगों से, उसको लेकर आए थे वहाँ पर वो, तो वो विग्रह उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ दिया और स्वयं चले गए सुतल लोक में, और वो आगे जाके प्रकट हो गए मुल्की नरसिंह भगवान के मंदिर में। उसकी एक लंबी कहानी है जो हमने कथा में यात्रा में बताई थी। वो विग्रह साउथ इंडिया में मिले राजेंद्र तीर्थ महाराज को, गौड़ीय संप्रदाय के, वहाँ से उन्होंने निकाल कर उसको लेके लेके आके मुल्की के मुलिका क्षेत्र मंदिर में उसको विराजमान किया। अरे सब लोग चले गए, भगवान भी चले गए द्वारपाल बनकर, लक्ष्मी तो परेशान हो गई, अरे हमारे भगवान तो कुछ काम के लिए गए थे, बोले आऊँगा जल्दी, आए नहीं लौट के, परेशान हो गई। तो देवताओं ने बताया वो तो सुतल लोक चले गए, पृथ्वी पर गए थे लेकिन वहां से उन्होंने डिटूर ले लिया, तो देखा तो क्या है, वो सुतल लोक का जो दरबार है राजमहल उसके कई गेट्स हैं, और अपनी मर्जी से बलि महाराज आज इस गेट से, कल उस गेट से, कल पश्चिम से, कल आज उत्तर से, जहां मर्जी से एंट्री कर रहे हैं, और ये भाग रहे हैं, कहां से आ रहे, कहां से भाग रहे, वहां पर खड़ा रहना उनको, उनके पहले जाके देख रहे हमारे पतिदेव कितना श्रम कर रहे हैं। तो फिर महारानी लक्ष्मी देवी दरबार में प्रवेश करती है, महाराज बामन देव दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में खड़े, तो बहुत आनंद होता है बलि महाराज को, स्वागत करते हैं, उनका पूजन करते हैं, महारानी क्या सेवा करें आपकी, हमारा भाग्य, अरे आप यहाँ से अपना वैकुंठ छोड़ के आ गई, क्या सेवा करें आपकी। तो महारानी लक्ष्मी देवी एक विनती करती है हाथ जोड़ के, महाराज आप केवल एक ही दरवाजे से आना रोज, ताकि हमारे महाराज एक ही जगह खड़े रहें, फिक्स लोकेशन, फिक्स पोजीशन, नो ट्रांसफर। आप सोच सकते हैं जैसे अर्जुन के सारथी बने भगवान, है ना, यशोदा का डांट खाया उन्होंने, द्वारपाल बन के, सेवक बन के, क्लास 4 एम्प्लॉय बन के खड़े हैं भगवान अपने भक्त के सामने। हम सबके लिए भगवान आराध्य हैं, लेकिन भगवान के लिए आराध्य कौन है, उनके भक्त हैं, भक्त के लिए आराध्य भगवान, भगवान के लिए आराध्य भक्त उनके, और ये प्रतियोगिता चलती रहती है जीवन भर अनंत काल तक, भगवान के आराध्य भगवान है, इसलिए हमारे लिए भी भगवान से अधिक आराध्य उनके भक्त होने चाहिए। मत भक्ता पूजा व्याधिका, जब उनके भक्त को कोई संतुष्ट करता है, उनकी सेवा करता है, भगवान न केवल उसको प्रसन्न हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं जो उसके भक्त को प्रसन्न करता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, दास दास अनुदास, केवल भक्तों का दास नहीं बनना है, भक्तों के दासों का दास बनना है, अनुदास बनना है, इनसिग्निफिकेंट दास बनना है। स्वयं भगवान केवल डायलॉग नहीं मार रहे हैं, भगवान हमको ये अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर है, उस व्यक्ति को एक एक्चुअल रूप में द्वारपाल बनना आसान नहीं है, फिर भगवान नम्रता के शिरोमणि है। वो अपने उदाहरण से बताते हैं, केवल प्रचार नहीं करते हैं। तो अगर भगवान द्वारपाल बनकर अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, हमको कितना भगवान के भक्तों के लिए सेवा करने के लिए आतुर होना चाहिए। और बाय द वे, भगवान के भक्तों की सेवा करने को मिलना ये जीवन का परम भाग्य है। धन प्राप्ति, प्रमोशन, पद प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, हाँ ऐश्वर्य प्राप्ति, ये तो भगवान की कृपा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हमारे चेतना को डिपेंड है। लेकिन भक्तों की कृपा सेवा प्राप्त होना, छोटी या मोटी, छोटे या मोटे भक्तों की, ये भगवान की विशेष कृपा है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का कितना बड़ा भाग्य है, हमारे दरवाजे पे भगवान की भक्तों की सेवा प्राप्त होती है, कोई जाना भी नहीं पड़ता है। महाराज सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। तो आज के कथा में वामन देव के क्या हम सीखते हैं? एक है इतनी भयंकर विपरीत अवस्था में जो टॉलरेंस, सहनशीलता उन्होंने दिखाई है, और अपने अपने चेतना की स्थिति से वो हिले नहीं, अटल स्थिति चेतना की उन्होंने दिखाई, जिससे भगवान भी उसका गौरव कर रहे हैं डिटेल में, हाउ आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। हाँ, और सेकेंड जो है कृतज्ञता, इतना सारा अवमान होने पर भी कृतज्ञता बनाए रखी उन्होंने हृदय में, थैंक यू वेरी मच माई लॉर्ड, मैं जानता हूँ इसका गौरव क्या है। एक भक्ति ऐसे कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और भगवान उस चेतना का गौरव कर रहे हैं द्वारपाल बनकर, हाँ लीला तो कर ही रहे हैं, छल लीला उन्होंने किया, लेकिन वो चेतना जो बलि महाराज ने दिखाई है उसका गौरव कर रहे हैं भगवान, इज ग्लोरिफाइंग दैट कॉन्शियसनेस। और हम लोग को, सब लोगों को उस चेतना के लिए लालायित होना चाहिए, आई वॉन्ट टू अचीव दैट कॉन्शियसनेस, भगवान को द्वारपाल बनाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्लीज द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। इसलिए आज भागवत में, हाँ सत्ययुग से लेकर आज तक उसका गौरव कर रहे हैं हम, कितना सुंदर चैप्टर है ये बलि महाराज का और वामन देव का। तो हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि वामन द्वादशी के दिन हमको ये चर्चा करने का मौका मिला। हाँ अगर चार दीवार भी होती ना तो भी हमारा भाग्य कैसा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जब भागवत के कथाओं का व लीलाओं का वर्णन होता है वहाँ पर नारद, सुखदेव, अगस्त्य सारे मुनि प्रकट हो जाते हैं, सारे भगवान के परम सिद्ध भक्त प्रकट हो जाते हैं, और उनके अप्रकट मतलब अदृश्य स्थिति में होने से वक्ता को शक्ति मिलती है, उनके होने से, उनके पवन से श्रोताओं को पवित्रता प्राप्त होती है, और श्रोता योग्य भी नहीं है, वक्ता योग्य भी नहीं है, दोनों योग्य बन जाते हैं। इसलिए हमको दिल से भागवत का श्रवण करना चाहिए, दिल से भागवत का कथन करना चाहिए। हाँ क्या कहते हैं, सब आशाओं को निरीक्ष होकर मैं भागवत का पठन और कथा कथन करना चाहिए, ये हमारे जीवन की धन्यता है। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं के श्रवण में और स्मरण में मग्न रहता है, एब्सॉर्ब्ड। हमारे गुरुदेव को एक बार किसी सन्यासी ने पूछा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक शब्द में व्याख्या क्या कर सकते हैं, प्लीज डिफाइन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन वन वर्ड नॉट वन लाइन। तो गुरुदेव राधानाथ महाराज ने कहा एब्सॉर्प्शन, मग्नता। तो जो व्यक्ति हरि लीला, कृष्ण लीला, भगवान लीला में मग्न है, चिंतन में, विचार में, कथन में, उसको दुनिया का कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, इट विल नॉट बी। इसलिए अधिकतर जब हम दुख में आते हैं जीवन में ना, तो वो दुख के प्रभाव से भूल जाते हैं कि एक कथा भी पढ़नी है, हमको श्रवण भी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका अनुभव किया है, एक शुद्ध भक्त की कृपा या उनका संग, और दूसरा भगवत लीला में मग्नता, इससे आप किसी भी बड़े दुख से पार हो सकते हो। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस, इनको माइक दे दो। आवाज बढ़ाओ।
जो
भगवान के आदेश के अनुसार। बताया ना मैंने, भगवान ने हमारे सामने ये प्रकट किया कि इसका अवहेलना होने के बाद भी ये कैसा स्थिर है अपनी भावना में। आप समझो अभी मैंने आपको बांध लिया, पता है क्या अनुभव होगा आपको? अरे इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन, इतनी अवहेलना, बांध के किसी को पुलिस खींच के लेके जा रहे हैं जंजीर से, तो उससे बड़ी अवहेलना हो सकती क्या एक इज्जतदार आदमी के लिए? भरी सभा में सबके बीच में उसको अरेस्ट किया गया। तो भगवान ना अपने भक्तों का गौरव दिखा रहे हैं। पांडवों को भी इतना कष्ट दिया उन्होंने, कुंती को कष्ट दिया, क्यों दिया? वो कष्ट देने के पश्चात ही भक्त का गौरव प्रकट होता है। भक्त का गौरव सुख में प्रकट नहीं होता है कभी। कष्ट देंगे ना तो उसकी चेतना के अंदर क्या है वो प्रकट हो जाता है। तो वो हर प्रकार से भगवान ने उसका गौरव हर रीति से प्रकट किया है। तो एक उनका भगवान ने अपमान करने का प्रयास नहीं किया, उनका गौरव प्रकट करने का प्रयास। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री वामन देव भगवान की जय हो।